Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad Bhumika, presented by Swami Sri Jagdish Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Paramatma ko paane ke liye sab raaj kaaj chhod karke gand ki nadi ke tat par ja karke प्रण कुटीर में बैठ करके साधना कर रहे हैं, प्रतिदिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे हैं। हिमालय की उस ठंड में एकांत में वन में जाकर के प्रण कुटी में बैठ करके तप कर रहे हैं, इसलिए कि इस जीवन में परमात्मा को पाना है। मगर प्रतिबंध आ गया, नहीं होने दिया ज्ञान, एक मृग शावक में आसक्ति हो गई। जहां मन को लगाना था वहां नहीं लग करके एक मृग शावक बीच में आ गया, कोई खराब कर्म जगे और एक मृग के बच्चे पर आसक्ति होने से वो व्यक्ति भट गए, तीन जन्म धारण करना पड़ा। वामदेव ऋषि पूर्व में इतने साधना की पर कोई प्रतिबंध था, उस जीवन में ज्ञान नहीं हुआ, अगला जीवन आने ही वाला था, मां के पेट में ही थे, वहां जाते जाते कोई कर्मों की रुकावट थी, कोई बंधन था, वहीं पर कट गया, उसकी सीमा समाप्त हो गई कर्म बंधन की। और इतने में तो मातृ गर्भ के अंदर ही ज्ञान हो गया और वामदेव वहीं पर कहने लगे, जैसे कोई शयन पक्षी को जाल में फंसाना चाहे तो कभी भी नहीं फंसेगा, अन्य पक्षी फंस जाएंगे लेकिन शयन पक्षी को फंसाएंगे वो पक्षी इतना कुशल होता है कि उस जाल को काट करके फिर से उड़ जाता है। तो जैसे शयन पक्षी जाल में फंसता नहीं है, ऐसे ही ये आत्मा इन शरीरों के जाल में कभी भी फंसने वाला नहीं है, मैं सदैव मुक्त हूं। लेकिन कब, जब वो प्रतिबंध हट गया, मां के गर्भ में जाकर के ज्ञान हुआ। प्रतिबंध यदि आ जाता तो नहीं होने देगा ज्ञान, भविष्यकालिक प्रतिबंध आ गया, बाद में ज्ञान होगा। कभी पीछे की कोई पकड़ है, किसी राजा को रानी में आसक्ति हो गई, किसी किसान को भैंस में आसक्ति हो गई और बाद में सब कुछ भी छोड़ दिया, लेकिन उसी की याद आती रही, ज्ञान नहीं होने दिया। कहीं वर्तमान का प्रतिबंध लगा है, प्रज्ञा मान्यम कुतर्कश्च विप्रिय दुराग्रह प्रतिबंध वर्तमान स्यात् विषयाशक्ति लक्षण है, पंचदशीकार कहते। आप बैठे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि इस समय ज्ञान हो ही जाए, क्यों, कोई प्रतिबंध पड़ा होगा। वर्तमान का प्रतिबंध ज्यादा घातक होता है, प्रतिबंध वर्तमान स्यात् विषयाशक्ति लक्षण, विषयों में अत्यधिक यदि आसक्ति है। रोज रोज प्रातः काल हम बैटरी को चार्ज करते हैं लेकिन वो विषयों का चिंतन में ही डिस्चार्ज हो जाती है, यहां से निकलते संसार चिंतन में ही डिस्चार्ज हो जाती है, फिर आते हैं सवेरे सवेरे एक घंटा चार्ज करते हैं और फिर बाहर निकलते ही डिस्चार्ज हो जाती है, ऐसा क्यों। लोग मानो कि यह भी कोई प्रतिबंध है जो उसको स्थिर नहीं रहने देता है, इस चिंतन को टिकने नहीं देता है और बाहर निकलते निकलते दूसरा ही विचार आकर के बैठ जाता है, विषयाशक्ति लक्षण है, प्रज्ञा मान्यम कुतर्कश्च। रोज बैठते हैं, श्रद्धा से बैठते हैं परंतु बुद्धि काम नहीं करती है। महाराज ये वेदांत हमको समझ में नहीं आता, हमें तो भक्ति अच्छी लगती है, कर्म में लगा दो, भक्ति में लगा दो, कीर्तन में लगा दो और अन्य कथाओं में लगा दो, लेकिन वेदांत हमारे समझ में नहीं आता है। ज्यादा समझने की कोशिश करते माथा गर्म हो जाता है, सिर चकराने लगता है, ये प्रज्ञा मंदता है, समझ लो कोई न कोई प्रतिबंध है जो समझने नहीं दे रहा है। कोई व्यक्ति की बुद्धि बहुत कुशल है, कुशाग्र है, समझता तो है लेकिन समझ करके तर्क पर तर्क उठने लग जाते हैं, ये कैसे होगा, वे कैसे होगा, श्रद्धा नहीं रह जाती है, सिर्फ तर्क मात्र रह जाएंगे, ये भी प्रतिबंध है। कोई समझे हैं तो उसका विपरीत ही अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, कहने वाले का भाव कुछ और है और पकड़ने वाला उसको अन्य ही दृष्टि से पकड़ लेता है, विपरीत पकड़ लेता है। कोई समझ भी गया लेकिन विचार करता है कि पहले की मेरी मान्यता को कैसे छोड़ दूं, मैं इतने वर्षों से जो बात बोल रहा था आज उसका कैसे त्याग कर दूं, लोग क्या कहेंगे, मैं अपना आग्रह नहीं छोड़ सकता, मुझे किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, मैंने जो समझा वो बिल्कुल सही है, ऐसा हटी दुराग्रही हो जाए, समझ लो कि यह भी प्रतिबंध है। ऐसे ऐसे प्रतिबंध यदि जीवन में आ जाए तो इस जीवन में जरूरी नहीं है कि ज्ञान हो जाए, नहीं होगा। और प्रतिबंध नहीं है तो इसी जीवन में भी ज्ञान हो सकता है। प्रतिबंध कैसे हटे? प्रतिबंध को हटाने के लिए साधक में साधना की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आपको निवेदन किया था, जन्मते ही व्यक्ति के ऊपर तीन ऋण चढ़ते हैं। जब संसार में आता तो तीन ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। जिन माता पिता से दुर्लभ मानव देह प्राप्त होती है उनके प्रति कर्तव्य है, यदि अपने सेवा, अपने आचरण, अपने व्यवहार से अपने जनक को प्रसन्न न कर पाया तो उनके ऋण से ऋण होना संभव नहीं है। भागवत में जब कंस उद्धार करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त करवाए और उनको जाकर के प्रणाम किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बात बोलते हैं कि माता पिता तो साधक पुत्र के लिए वंदनीय है, सेवनीय है, और जिस अपेक्षा से संतान को जन्म दिया है और जो लाड़ और प्यार संतान को देकर के वो अपने आप को खुशी प्रसन्न पाते हैं, वो लाड़ प्यार आप हमको न दे पाए, बाल चपल लीलाओं का, स्थितियों का आप हमसे आनंद न ले पाए, इस बात का तो हमें खेद है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कोई भी संतान यदि माता पिता जो जन्म देने वाले हैं और उनका अपने शरीर से सेवा नहीं करती हैं तो जिंदा भी संसार में मुर्दे के समान है, और जब इस शरीर का त्याग करता है तो मरने के बाद यमराज के दूत उसी व्यक्ति के शरीर का मांस काट काट करके वापस उसी को खिलाते हैं, क्योंकि वो इतना कृतज्ञ है, जिन माता पिता ने शरीर को जन्म दिया है वो उस शरीर से उनकी सेवा नहीं की है। इतना बड़ा ऋण बताया गया है, इसलिए जब ऐसा ऋण चढ़ा हुआ है उसको ज्ञान कैसे हो जाएगा, यही बात है। इसलिए नचिकेता ने पहले वरदान के रूप में मांगा, ऐसा वरदान मांगा कि जिससे मेरा पितृ ऋण समाप्त हो जाए, इसलिए पितृ परितोष मांगा। तीन वरदान में पितृ परितोष मांगा, नहीं तो यह प्रतिबंध ज्ञान नहीं होने देगा। दूसरा और भी प्रतिबंध रह जाता है, पितृ ऋण रह जाता है। पितृ ऋण से मुक्त होने के बाद ऋषि ऋण, ऐसा ऋषि ऋण आता है क्योंकि माता पिता ने शरीर दिया, पाला पोषा बड़ा किया, लेकिन उसके अंदर जो मनुष्य में मनुष्यता आती है, मानवता प्राप्त होती है, वो आती है वेद पद्धति शास्त्रीय पद्धति से जीवन जीने में, नहीं तो बिना सींग और पूंछ का यह भी पशु रह जाता। लेकिन उसका माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, मां के प्रति क्या कर्तव्य है, बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, ये जितना भी बोध है, जिन कर्तव्यों से आज समाज सुव्यवस्थित चल पाता है, वो सारे कर्तव्य का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, वो शास्त्र से प्राप्त होता है, वो वेद से प्राप्त होता है। और वो वेद के मंत्रों को जिन ऋषियों ने कठोर तप साधना करके अपने तपोबल से प्रकट किया है, उन ऋषियों का हमारे ऊपर कितना ऋण है। यदि वो ऋषि न होते तो एक जंगल के जानवर में और बंबई में रहने वाले जानवर में कोई फर्क नहीं रहता, जानवर ही तो कहे जाते। चौपाए में और दो पाए वाले जानवर दोनों ही जानवर हो जाते, कोई भेद नहीं रह जाता। लेकिन इतना बड़ा जो अंतर है, वो अंतर है कि वो शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करके मानवता प्राप्त करता है। इसलिए उन ऋषियों का बहुत बड़ा हमारे ऊपर ऋण है, उन ऋण को उतारने के लिए वेद विधि से अपना जीवन जिए, वेद जो कह रहा वैसा कर्म करें, वेद कहें उसी उपासना करें, उसका पालन करने के लिए उसका यह भी जीवन सुधरेगा। माता पिता का ऋण चुका करके इस जीवन में यश और कीर्ति को प्राप्त करेगा, और ऋषियों का ऋण उतार करके उस व्यक्ति ये जीवन और वह जीवन, ये लोक और परलोक दोनों को ही सुधार लेता है। माता पिता की सेवा से यह है, और देव ऋण ये ऋषि ऋण उतार करके दोनों लोगों को सुधार लेगा। इसलिए द्वितीय वर के रूप में नचिकेता ने वर्ण किया है अग्नि विद्या। जो अग्नि विद्या वेद विधि से संपादित है, वेद के अनुसार की जाती है, उससे ये जीवन भी सुखी और परलोक भी सुखी सुधर जाता है। इसलिए इस विद्या के द्वारा देव ऋषि ऋण से मुक्त होने की बात कही गई, परंतु फिर भी एक ऋण रह जाता है, देव ऋण। जिस देव ने, जिस परमेश्वर ने ये मानव देह मनुष्य को दी है, माता पिता तो उसके माध्यम बने थे, इस जीव को जो संयोग दिया है वो तो परमेश्वर का ही अनुग्रह है। एकमात्र परमेश्वर जो सबके पिता है, परम पिता है, एक ही देव है, एक अनेक प्रिक को चला रहे हैं। सारे जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन चराचर संपूर्ण प्राणियों का जो संरक्षक है, जो पोषक है, जो उत्पादक है, ऐसा जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर का भी तो हमारे ऊपर कितना बड़ा ऋण है। वो इतना बड़ा ऋण जिसको कोई ये लौकिक माता पिता पूरा नहीं कर पा रहे, उस काम को वो परमेश्वर कर रहा है। जिसको अपना आप नहीं कर पाता, उस काम को परमेश्वर करता है। श्वास की गति को जब हम सो जाते हैं चला रहा है, खा के सो गए उसको हजम कर रहा है, हमारी बुद्धि को चला रहा है, कैसी बुद्धि है उसको दिया है, ये सारा परमेश्वर का तो ऋण है। इसलिए उस परमेश्वर के प्रति जो ऋण है वो कैसे उतारा जाए, उसके लिए तृतीय वरदान मांगा। कल आप सुन रहे थे तीसरा वरदान उसके लिए मांगा गया है, यम प्रेत्य विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व ये के नायम अस्तित्व चय के ये तद विद्या मनुष्यष्टस्त्वया हम वराणाम एष वरस तृतीय। महाराज तीन वरों में मेरा यह तीसरा वरदान है जिससे मैं कि देव ऋण से मुक्त हो जाऊं। भाव यह है, मैं ये जानना चाहता हूं कि मरे हुए मनुष्य के संबंध में जो संशय होता है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, इसकी असलियत क्या है। साधारण प्रश्न भी और विशेष प्रश्न भी, रहस्यात्मक भी है और सामान्य भी है। एक प्रश्न तो ये है कि मरने के बाद कुछ की मान्यता ये है कि मर गया अब कुछ नहीं है, गया हो तो है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मर गया तो शरीर मरा है, लेकिन शरीर के भीतर जो कोई चेतन तत्व था जिससे व्यवहार हो रहा था, अरे वो तो है, यहां नहीं तो कहीं दूसरी जगह है। इस घर को खाली किया तो दूसरे घर में गया है, पर है। कुछ मान्यता ऐसी होती है, इस संशय को मिटाने में आप ही सक्षम है, इसलिए आप बताएंगे कि महाराज मरने के बाद क्या होता है। कोई परलोक को मानते ही नहीं है, कुछ लोग परलोक को मानते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे। अब जो कहेंगे वो तो बहुत लंबा पड़ सकता है, थोड़ा संकेत दिलाता हूं। महाराज यम ने आगे जाकर के उसका उत्तर भी दिया है। जो लोग यह कहते हैं न सांप्राय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, बात ऐसी है कि जो मूढ़ लोग है, जो प्रमादी लोक है, जो बालक बुद्धि जिससे अज्ञानी लोग हैं, ऐसे लोगों को तो बेटा परलोक दिखा ही नहीं पड़ता है। न सांप्राय प्रतिभाति, उनको परलोक नहीं सूझता है कि मरने के बाद भी शरीर का त्याग करके भी कोई आगे मिलेगा, रहना पड़ेगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, बदला चुकाना पड़ेगा आदि आदि, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि वो मूड है, वो तमोगुणी है, अज्ञान में पड़े हुए हैं, वो बालकों की बुद्धि जैसे हैं, अथवा प्रमादी हैं, वो विषयी कीड़े हैं, कहां उसका चिंतन कर पा रहे हैं, उसको तो सब यही के भोग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इतने मात्र से परलोक न हो ऐसी बात नहीं है। न सांप्राय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति परैति माने पुनः पुनः वशम आपद्यते में। जो यह कहते हैं कि ये लोक ही सब कुछ है, इसके बाद कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को तो बार 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 नचिकेता मेरे पास आना पड़ता है, मेरे वश में होना पड़ता है, मेरे चंगुल में पसना पड़ता है, और उनको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए ये मानना सर्वथा गलत है कि परलोक नहीं है। प्रश्न ये उठेगा कि फिर ये शरीर नहीं तो कहां रहता है, उसका भी समाधान आगे जाकर के दिया है। योनि मन्य प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन स्थाणु मन्य अनुसंयन्ति यथा कर्म यथाश्रुतम। जिसके जैसे कर्म और संस्कार है, अर्थात कर्म और संस्कार जो भी कुछ कर रहा है उसका दो अंश बनता है, एक अदृष्ट अंश है एक संस्कार अंश है। जो कर्म होते हैं वो आने वाले शरीर में सुख और दुख दिलाते हैं, और जो संस्कार होते हैं वो आने वाला शरीर दिलाता है। कौन सा शरीर मिलेगा? वो संस्कार से मिलेगा, और वहां सुख आएगा कि दुख आएगा वो यहां के किए हुए कर्म से प्राप्त होगा। इसलिए जीव को यह शरीर का त्याग करके अन्य शरीर कर्म और संस्कार के आधार पर प्राप्त होता है, इसलिए परलोक नहीं है ये बात कहना उचित नहीं है। ये बात कहेंगे आगे जाकर के, परंतु इसमें एक गहन प्रश्न भी है जिसको विशेष वैराग्य के बिना समझा नहीं जा सकता। ये जो तृतीय वरदान है बहुत गहन है। अस्तित्व एके नायम अस्तित्व चेके, कुछ कहते हैं कुछ कहते नहीं है, जो है और नहीं है का झगड़ा चलता है, संशय होता है, उसको है करके कहा जाए कि नहीं है करके कहा जाए। क्या है वो तत्व महाराज जो मरने के बाद भी जिसमें संशय हो जाता है? माने शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, तीनों ही शरीर नहीं है, उसके बाद की जो स्थिति है उसको है करके कहा जाए कि नहीं है करके कहा जाए, यह बहुत बड़ा संशय हो जाता है। तीनों शरीरों से जुदा कोई तत्व है, इनके प्रयाण हो जाने पर, तीनों शरीरों को अलग कर देने पर, और जो बचे उसको है करके कहें कि नहीं है करके कहें, क्या कहा जाए, क्या है उसका स्वरूप, इस बात को समझना जरा आसान काम नहीं था। जो तीनों शरीरों के बिना जो तत्व है उसको है करके कहें कि नहीं है करके कहें, बहुत विलक्षण है। कल मैंने आपको निवेदन किया था भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसे ही डरते डरते अर्जुन को उपदेश दिया है। पहले बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मैं ऐसा जो ज्ञेय है मैं तुझे कथन करूंगा, ज्ञेयम ये तत् प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नोते। अरे जिसको जान लेगा ना तो अर्जुन तो अमर हो जाएगा, कोई भी जान लेगा तेरे जैसे तो सबको अमरता प्राप्त हो जाती है। वो ज्ञेय तत्व मैं तुम्हें बता रहा हूं। और अर्जुन जब सावधान हो गया सुनने के लिए, तब भगवान कहते हैं अनादि मत परम ब्रह्म। अरे वो तो परब्रह्म है, जानने योग्य, जो अनादि मत है, जिसका कोई कारण नहीं है, कारणातीत तत्व है, वो ब्रह्म है। उसका लक्षण करने लगे कि कैसे जाने, कोई पहचान न तत् सत न असत उच्चते। अर्जुन है उसको न सत कह सकते हैं और न असत कह सकते हैं, सत असत दोनों से विलक्षण है। अब जो है ये भी नहीं कहा जा सकता, नास्ति नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, विलक्षण ब्रह्म तत्व है, उसको संबंध में आप जो जानते हो मुझे कथन करो, नचिकेता ने पूछा। सद असद से जो विलक्षण तत्व है उसको मैं आपसे जानना चाहता हूं महाराज। महाराज यम ने देखा कि ये तो बड़ा कठिन प्रश्न कर लिया है, तब वहां पर कहने लगे देवे रत्रापि विचिकित्सितम पुरा। बेटा मैं क्या कहूं तुझे, इस संबंध में तो पहले देवताओं को भी संशय हुआ था, नहीं सुविज्ञ या मनोरेश धर्म, ये तो बड़ा कठिन तत्व है, ये आसानी से जानने में आने वाला नहीं है। सुज्ञेय नहीं है, ज्ञेय तो है लेकिन सुज्ञेय नहीं है। जैसे सामने पड़े हुए पुष्पहार को अच्छी तरह से आंख से देख लिया, समझ लिया कि पुष्पहार ही है, घड़ी को देख लिया कि 8:30 बज ही रहे हैं, साफ साफ सुज्ञेय हो गई, लेकिन इस प्रकार से इंद्रियों के माध्यम से उसको देख करके सुज्ञेय नहीं किया जा सकता है, ज्ञेय तो है। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञेयम ये तत् प्रवक्ष्यामि, पर सुज्ञेयम नहीं कहा। केनो उपनिषद में भी आचार्य ने शिष्य को पूछा कि तुमने अच्छे प्रकार से जान लिया है? शिष्य कहने लगा कि महाराज अच्छे प्रकार से जान लिया ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। तो क्या नहीं जाना है? बोले नहीं जाना ये भी नहीं कह सकता हूं, तो जान लिया हूं ये कह सकता हूं। अच्छी तरह से जान लिया ये भी नहीं कह सकता, और नहीं जाना ये भी नहीं कह सकता, पर यह कह सकता हूं कि जान लिया ज्ञेय है। इसलिए ये जो ज्ञेय तत्व सुज्ञेय देवताओं को भी नहीं हुआ है, वो भी इस प्रकार यह करके नहीं देख पाए, तो नचिकेता तुम क्या देखोगे? इसलिए ऐसा काम करो, इस वरदान को मेरे लिए ही छोड़ दो, इसके बजाय कोई दूसरी चीज मांग लो। क्या मांगे? यमराज नचिकेता को कहने लगे क्या मांगे? तुमको नहीं सूझता तो मैं बता देता हूं, 100 उम्र की आयु के पुत्र पौत्र मांग ले, हाथी घोड़े मांग ले, रथ मांग ले, लंबी चौड़ी भूमि मांग ले, स्वयं जितने वर्षों तक जीना चाहता वो मांग ले, और यदि कोई इसके सदृश और भी कोई वरदान समझता तो मांग ले, अपने चिर जीविका मांग ले, महान भूमि मांग ले, और ये सोचता हो कि ये सब मांग करके मैं क्या करूंगा, मैं तो मरूंगा, मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, भोग मिल जाएंगे पर भोगने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, ऐसा भी नहीं, भोगने की शक्ति भी मांग ले। कामानाम त्वाम काम भाजो करो मी, अरे तुमको जैसा चाहोगे उसको भोगने की शक्ति भी मैं प्रदान कर देता हूं। और यहां तक कि मृत्यु लोक के लोगों को जो नहीं मिलते हैं ये कामा दुर्लभा, मृत्यु लोक में जो जो काम दुर्लभ है, जो भोग नहीं मिलते हैं, वो सबको तू स्वच्छंदता से अपनी इच्छा पूर्वक मांग ले। इमा रामा सरथा सतुर्या नहीं दृशा लंभनिया मनुष्य ही, ये रमणिया अप्सराए मांग लो, ये रथ मांग लो, घोड़े मांग लो, जो ये सब मनुष्यों को प्राप्त होने वाले नहीं है, और उन सब को मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, और तुम उन सब को लेकर के उनका उपयोग करो, उनका उपभोग करो, ये मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन नचिकेता मरणम मानुप्राक्षी, मृत्यु संबंधी प्रश्न मत करो, अस्ति नास्ति संबंधी प्रश्न मत करो, ये कठिन है, तुम नहीं समझ पाओगे, देवता भी नहीं समझे। तब नचिकेता ने क्या जवाब दिया, सोचो यदि उस जगह हम होते तो क्या करते, गड़ी मना करते इसलिए नहीं बताऊंगा क्या करते, हैं? अपने से पूछ लो क्या करते, बड़ा कठिन काम। लेकिन नचिकेता कहता, सो भावो मृत्य से दंत के तत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेज है, ये जितने भी भोग आप हमें दे रहे हैं स्वभाव है, कल तक रहेंगे कि नहीं कोई नहीं कह सकता है, यद्यपि आप अंतक सबका अंत करने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आपका भी अंत होगा, जो याम्य पद आपको प्राप्त हुआ है ये भी इसका भी अंत होगा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। याम्य पद समाप्त कैसे होगा, यम परमात्मा समाप्त नहीं होंगे पर उपाधि समाप्त होगी, ये तो रहने वाले नहीं जिससे आप सब दे रहे हैं, और सब भोग संसार के ले भी लूंगा तो आखिर तो इंद्रियों की शक्ति क्षीण होगी ही होगी, और कितना ही लंबा जीवन मांग भी लूंगा, लेकिन जब आपकी ही कुर्सी नहीं रहेगी तो आपके अनुग्रह से हमको जो पद मिलेगा वो कैसे रह जाएगा, पता नहीं कब छिन जाएगा, इसलिए मुझे यह सब नहीं चाहिए। और धन आदि के द्वारा मनुष्य को तृप्त नहीं किया जा सकता है, और यदि लौकिक व्यवहार चलता है तो आपकी कृपा से ये तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा, वरदान में मांगने की आवश्यकता नहीं है। और जीविष्यामि यावद् इष्यसि त्वम्, जब तक आप शासन करोगे हमें मारने वाला कौन है, ऐसे ही हम रहने वाले हैं, इसलिए वरस्तु मे वरणीय स एव, वर तो मेरा वही है जिसके लिए हमने प्रार्थना किया था। यमराज नचिकेता की बड़ी प्रार्थना परीक्षा ली, और जब नचिकेता पास हो गए तब ऐसी स्थिति में यमराज सुंदर उपदेश प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम धन्य हो, संसार में मनुष्य के सामने श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं, पर तुम्हारे जैसा जो विवेकी पुरुष है वही श्रेय को ग्रहण करता है, बाकी संसार के लोग प्रेय में फंस करके रह जाते हैं, जो श्रेय कामी है उन्हें श्रेष्ठ की निश्रेष्ठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो मोक्ष प्राप्ति जिससे होती है उसका एकमात्र साधन है प्रणव ओम एतद आलंबनम श्रेष्ठम, इस ओमकार की साधना के द्वारा उस परमात्मा को अपने अंतर आत्मा के रूप में अनुभव किया जा सकता है, उस सत्य को जाना जा सकता है, वो सत्य ही सबकी अंतरात्मा है, जिसको प्रणव शब्द से बोलते हैं, जिसको ओम से बोलते हैं, सब नामों में ओम श्रेष्ठ नाम है, इसलिए एतद वही ब्रह्मा, यदि ओंकार है परमच अपरमच, ये जो ओंकार है यही पर और यही अपर ब्रह्म है, इस ब्रह्म को ही अंतरात्मा के रूप में ध्यान करके चिंतन करके साधन मुक्त हो जाता है, साधन को धारण करके साधक मुक्त हो जाता है, इस प्रकार का बड़ा सुंदर उपदेश आगे और भी चलेगा, परंतु सज्जनों इस सब को पूर्ण करना संभव नहीं, आज ये प्रथम अध्याय का भाग जो है पूर्ण किया गया है, मैं यही सोच रहा था कि यहां तक पहुंचूं लेकिन वहां भी दौड़ करके आना पड़ा, आज सारांश सुनाना बहुत जरूरी था, कम से कम क्या सुना है इतने दिनों वो आपने ध्यान में रखा, अब ये जो आत्मा संबंधी विस्तार से उपदेश देंगे वो उत्तम साधक को, उसके लिए आपने देखा था कल इंद्र को कितने साल तपस्या करनी पड़ी, 101 तो एक वर्ष तो आप भी कर लेना। वो इंद्र था, उसका जहां बड़ा था तो एक वर्ष तक तो हमको भी करनी ही होगी। और मेरा विचार यही है, हो सका तो अगले वर्ष जब संयोग मिलेगा ईश्वर कृपा से, तो इसी प्रसंग को स्पष्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी भावना के साथ में वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगता है प्रेमपुरी आश्रम में, तो जब आते हैं ना तो जैसे आप लोगों को अपने घर में जाकर के कैसा लगता है, वैसे हमको प्रेमपुरी में आकर के लगता है। जब ही हम यहाँ पर दूसरे माले पर पहुंच गए, तीसरे माले पर पहुंच गए और आज तो प्रमोशन होके पांचवें माले पर पहुंच गए है? ये भूमिका है, वो सप्तम भूमिका है, तो पांचवी भूमिका तक तो आ गए हैं हम लोग। बड़ी सुंदर बात है। तो ऐसे प्रेमपुरी आश्रम जो साधक की श्रेणी आगे से आगे बढ़ाता है, पहली क्लास से साधक बढ़ते बढ़ते पंचम क्लास तक आ गया, तो सप्तम क्लास में भी अवश्य पहुंचेंगे। प्रेमपुरी आश्रम के लिए तो जो कुछ कहा जाए उतना कम ही होगा। ये तो महाराज ऐसा तीर्थ बंबई में है, जो तीर्थ आज तीर्थों में भी वो तीर्थ नहीं मिल पाएंगे आपको, वो तीर्थ यहां पर मिल जाते हैं। तीर्थों को भी संत तीर्थ करते हैं, और जो संत तीर्थों में भटकने पर भी आपको नहीं मिल पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, वो संत तीर्थों से आकर के जगह जगह से आकर के इस स्थान को तीर्थों का भी तीर्थ बना दिया है। ये तो सचमुच में बंबई का परम पावन तीर्थ है, और इस परम पावन तीर्थ में प्रतिदिन इस ज्ञान गंगा में गोते लगा लगा करके और आप सबके साथ साधक निर्मल हो जाओ। और इन पुजारियों को, इन पंडितों को जो स्नान करवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, प्रेमपुरी के ट्रस्टी भगवान इनको ऐसी ही शक्ति दे रहे हैं और इस ज्ञान गंगा में साधकों को गोते लगवाते रहे हैं। ऐसी शुभकामना के साथ वक्तव्य को विराम दूंगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।